पूर्व पाठ में भुआदियों धातव का क्या अर्थ होता है उसके लिए बताया था कि क्रियावाचकत्वे सति भुआदिगण पठितत्वम धातुत्वम, ये धातु का लक्षण हुआ। इस लक्षण में दो शर्तें हैं, एक है कि क्रिया का वाचकत्व होना चाहिए, वाचकत्व माने बोधकत्व माने क्रिया अर्थ होना चाहिए उसका, और दूसरा भुआदि गण जो है भुआदि अदादि दिवादि इन सब गणों में उसका पाठ होना चाहिए तो वह धातु कहलाने के योग्य है। तो इस तरह से अगर हम अर्थ करते हैं तो क्या होगा कि हमें दोनों देखना होगा कि इसमें क्रियावाचकत्व है कि नहीं और इसमें भुआदिगण पथकत्व है कि नहीं। अगर दोनों है तो धातु संज्ञा होगी, दोनों नहीं है तो, दोनों में से एक भी नहीं है तो धातु संज्ञा नहीं होगी। तो इसका फल बताते हैं कि अत्र क्रियावाचित्व मात्र उक्त हो, कहा कि ये जो हमने धातु का लक्षण बताया है इसमें केवल क्रियावाचित्व मात्र की उक्ति करें, माने केवल कहेंगे क्रियावाचकत्वम धातुत्वम ऐसा अगर कहेंगे तो क्या होगा कि जिसका अर्थ क्रिया है सबकी धातु संज्ञा होने लगेगी, भले ही उसका भुआदि अदादि में पाठ हो या न हो। तो वही कहते हैं कि अत्र क्रियावाचित्व मात्र उक्तो, इस लक्षण में धातु के लक्षण में अगर हम क्रियावाचित्वम धातुत्वम कहते हैं तो क्या होगा कि वर्जनादि रूप क्रियावाचके, वर्जन आदि जो क्रिया है, वर्जन माने त्याग, तो त्याग आदि क्रिया का जो वाचक है अव्यय कौन, हिरुक नाना इत्यादि इन सबों में अति व्याप्ति हो जाएगी लक्षण की, माने हिरुक और नाना की भी जो है धातु संज्ञा होने लगेगी क्योंकि ये क्रिया वाची तो है ही, क्रिया का बोधक है ये, भल इसका पाठ नहीं है भुआदिगण में, तो इसको रोकने के लिए इस अतिव्याप्ति को बताया था ना अलक्ष्य लक्षण गमनम। तो धातु का लक्षण जो हमने किया तो वह लक्षण किस में जाना चाहिए, केवल धातु में ही जाना चाहिए, धातु ही जो है इस लक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अगर अलक्ष्य में चला जाएगा, अव्यय में चला जाएगा तो वो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इसी अतिव्याप्ति को मिटाने के लिए लक्षण में भुआदिगण पथतत्वम भी जोड़ना जरूरी है। आगे दसवीं कारिका में जो है इसी बात को कहेंगे कि इस तरह का जो लक्षण बनाया, दो बातों को बताया गया उससे क्या लाभ है, ताकि तावन मात्रोक्तो च, ताकि ठीक है भुआदिगण पठतत्वम कहना जरूरी है, नहीं कहेंगे तो हिरुक और नाना में भी धातु संज्ञा होने लगेगी। तो ऐसा करिए ना, यही केवल कहिए भुआदिगण पठतत्वम, ये छोड़ दीजिए क्रियावाचकत्वे सति, तो क्या दोष है। तो उसमें दोष बताने के लिए दसवीं कारिका का अवतरण होता है, इसमें कहा कि सर्वनाम अव्ययादि नाम यावादी नाम प्रसंगतः नहीं तत्पाठ मात्रे न युक्तम इत्याकरे स्फुटम, ताकि या और बा, ये यत शब्द का स्त्रीलिंग में या ये या रूप होता है, हैं? जैसे जो कन्या जा रही है तो या कन्या गच्छति, इसमें जो या शब्द है ना यह क्या है, सर्वनाम शब्द है, और यह या धातु में भी आता है, या प्रापने याति यातः यान्ति, तो सेम है दोनों में, धातु में जो भी या है और सर्वनाम में भी या है। ऐसे ही अव्यय है बा, बा माने विकल्प, तो बा धातु भी है, बाति बातः बान्ति है, और बा विकल्प अर्थ वाला भी अव्यय है। तो या बा आदि नाम, इस तरह के जो शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं और भुआदिगण पठित वाले से मिलते जुलते हैं, तो उनको भी जो है ना धातु संज्ञा का प्रसंग होने लगेगा, धातु संज्ञा होने लगेगी। यही इन्होंने कहा कि सर्वनाम अव्ययादि नाम यावादि नाम प्रसंगता। अब ये किसके में दोष बताया जा रहा है कि अगर लक्षण में हम कहेंगे कि भुआदिगण पठितत्वम धातुत्वम, माने गण में जिसका पाठ है उसकी धातु संज्ञा हो, तो गण में तो या की का भी पाठ है, बा का भी पाठ है, तो क्या होगा कि अव्यय और सर्वनाम वाला जो या बा है उसकी भी धातु संज्ञा होने लगेगी। अगर हम क्रियावाचकत्वे सति जोड़ देते हैं तो फिर या बा की नहीं होगी सर्वनाम अव्यय वाले की, क्योंकि ये क्रिया का वाचक नहीं है। वही कहा नहीं तत्पाठ मात्रे न, केवल गण में पाठ हो जाने से शब्द की शब्द साम्य के आधार पर उसकी धातु संज्ञा पाठ को मात्र के आधार पर नहीं करनी है। इति आकरे स्फुटम, आकर कहते हैं समुद्र को, और आकर शब्द से न महाभाष्य को बताया जाता है, वाक्यपदीयम को बताया जाता है, तो इन सब ग्रंथों में ये इति स्फुटम, ये स्फुट रूप से स्पष्ट रूप से जो है इन बातों को बताया गया है। अब ये जो मैंने अभी आपको कारिका का अर्थ बताया है, इसी बात को भूषणकार आगे लिखते हैं कि गण पठतत्व मात्र उक्तो, यदि लक्षण में हम भादिगण पथ तत्वम इतना ही मात्र बोलेंगे तो क्या होगा, सर्वनाम अव्यय नाम अपि धातुत्वम स्यात्। सर्वनाम जो है उस और अव्यय जो है जो मिलता जुलता शब्द है गणपठित शब्द से उसकी भी धातु संज्ञा होने लगेगी। तथा च और फिर क्या होगा, याह पश्यसी, यहाँ पर याह जो है ये सर्वनाम है इत्यादो, इसमें क्या होगा कि आतो धातो हो इति आकार लोप आपत्ति, फिर धातु संज्ञा होने से याह पश्यसी में जो या का आ है उसका भी लोप होने लगेगा। इस पर जो है प्रतिपक्षी जो विरोधी है वह एक तर्क प्रस्तुत कर रहा है, कहा कि ऐसा एक नियम है परिभाषा है कि लक्षण प्रतिपदोक्तयो हो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्, माने दो तरह के शब्द आपके सामने अगर रखे हैं, एक है लाक्षणिक शब्द और एक है प्रतिपदोक्त शब्द, तो उसमें किस शब्द का ग्रहण करना चाहिए, तो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्, प्रतिपदोक्त शब्द का ही ग्रहण करना चाहिए। अब मन में जिज्ञासा होगी कि ये लाक्षणिक शब्द क्या होता है, प्रतिपदोक्त शब्द क्या होता है, तो इसको जो है ना बड़ा आसानी से आप समझ लीजिए, दो होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो है वह होता है प्रतिपदोक्त शब्द, और आर्टिफिशियल जो होता है वह होता है लाक्षणिक शब्द। तो जहाँ पर लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त होगा, आर्टिफिशियल और नेचुरल शब्द होगा, तो वहाँ पर नेचुरल शब्द में ही कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, और अब शास्त्र के हिसाब से देखिए, लक्षण कहते हैं सूत्र को, तो जो सूत्र को लगा करके जो शब्द सिद्ध हुआ हो वह हो गया लाक्षणिक शब्द, और जिसमें सूत्र की जरूरत नहीं है रेडीमेड है बना बनाया है वह हो गया प्रतिपदोक्त शब्द, ठीक है। अब या प्रापणे धातु जो है याति यातः यान्ति वाला वह प्रतिपदोक्त शब्द है, या बाति बातः बांति वाला जो बा धातु है वह प्रतिपदोक्त है, या और बा बनाने के लिए किसी लक्षण की किसी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ी तो वह प्रतिपदोक्त शब्द है। और यहाँ जो याह पश्यसी में या है या इसमें तो लक्षण के द्वारा बनाए हैं, क्योंकि पहले प्रातिपदिक कौन था, यत प्रातिपदिक था, फिर उसमें जो है हमने क्या किया, तकार को अत्व किया, पररूप किया, फिर ताप किया, और टाप करने के बाद फिर दीर्घ किया, तब जा करके या बना, तो ये कई लक्षणों को लगाने से कई सूत्रों के लगाने से ये बना है। तो जब आतो धातो सूत्र से आकार लोप करने की बात आएगी या में, तो वह लोप नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि आतो धातो से किसमें लोप करना है, प्रतिपदोक्त शब्द में लोप करना है, यह तो लाक्षणिक शब्द है, तो यहाँ लोप नहीं होगा, ऐसा जो है प्रतिपक्षी ने बोला। उसी बात का जवाब आगे दिया जाएगा कि ननु लक्षण प्रतिपदोक्तयो हो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणात् न सर्वनामनो ग्रहणम्, माने आतो धातो से आकार का लोप नहीं हो पाएगा याह पश्यसी में, क्योंकि ये सर्वनाम है, यह प्रतिपदोक्त नहीं है, यह लाक्षणिक है, तो इसका ग्रहण नहीं होगा। तस्य लाक्षणिकत्वात्, यह जो याह शब्द है यह लाक्षणिक शब्द है, यहाँ पर आपने जो दोष दिया कि आकार लोप होने लगेगा, तो वह दोष नहीं है, आकार लोप नहीं होगा, ये परिभाषा मना कर देगी लक्षण प्रतिपदोक्तयो हो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। इस तरह से प्रतिपक्षी ने जब बोला तो फिर दूसरा एक कारिका में जवाब दिया बा, या बादी नाम, या पहले कहा और या कहने पर जो है ना जो दोष था आकार लोप का उसका वारण कर दिया प्रतिपक्षी ने परिभाषा लगा करके, तो फिर दूसरा उदाहरण दिया बा का उदाहरण दिया, विकल्पार्थक जो बा है उसका, उसी की बात हो रही है कि अव्यय बा इत्यादो, अव्यय जो बा इत्यादि है उसमें अति प्रसंग है, उसमें अति प्रसंग होगा, अति प्रसंग माने अति व्याप्ति होगी, माने बा की भी धातु संज्ञा होने लगेगी, क्यों, क्योंकि तादृशस्यैव गणे पाठे न, तादृश माने बा जो है अव्यय वाला जो बा है उसी तरह के बा का गणे पाठे न, गण में पाठ किया गया है, तो निर्णय असंभवा, तो फिर आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि यह बा जो है वो गणपाठ वाला बा है या अव्यय वाला बा है, और जब निर्णय नहीं कर पाएंगे तो आपको अव्यय वाले बा की भी जो है धातु संज्ञा करनी पड़ेगी। तथा च विकल्पार्थक बात इति प्रयोग स्यात इति भाव, और फिर क्या होने लगेगा कि जो विकल्पार्थक बा अव्यय है उसकी धातु संज्ञा होने से इसका भी रूप चलने लगेगा बाति बातः बांति, और बाति का अर्थ हो जाएगा विकल्पयति, जो कि होता नहीं है। फिर आगे फिर आगे जो है प्रतिपक्षी जो है ना इस पर भी अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं कि न च गति गंधनादि अर्थ निर्देशो नियामकः, ताकि धातु पाठ में धातु का भी पाठ किया गया है और उसके साथ साथ धातु का अर्थ भी बताया गया है। उसका तात्पर्य ये निकलेगा कि इस अर्थ में अगर ये शब्द हो तो धातु संज्ञा हो, जैसे बा धातु है उसका अर्थ निर्देश है बा गति गंधन हो, माने गति अर्थ में और गंधन अर्थ में बा शब्द का बा धातु का प्रयोग होता है। तो चूंकि विकल्पार्थक बा जो है उसका अर्थ तो विकल्प है, उसका अर्थ गति और गंधन है नहीं, तो उसकी धातु संज्ञा नहीं होगी, इसकी आपत्ति नहीं होगी, इस तरह से प्रतिपक्षी कहते हैं। तो उसका जवाब खंडन करते हैं कि कहा कि नौच गति गंधनादि अर्थ निर्देशो नियामक, यह जो धातु पाठ में अर्थ निर्देश है वह नियामक नहीं है, वह ये नियम नहीं बना सकता, नियम बनाने के काबिल वो नहीं है कि इन अर्थों में रहेगा बा तो धातु संज्ञा होगी और इस अर्थ में नहीं रहेगा तो नहीं होगी, इस तरह का वह नियम नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, ताकि तस्य अर्थ अनादेशनात् इति भाष्य पर्यालोचनया आधुनिकत्व लाभात्, ताकि वह जो धातु में जो धातु पाठ तो ठीक है पाणिनि ने किया वह प्रामाणिक है, लेकिन धातु का जो अर्थ निर्देश किया गया है ना वह आधुनिक है, आधुनिक है। उसमें ये कहा जाता है कि भीम नाम के कोई आचार्य हुए हैं, व्याकरण हुए हैं भीम नाम के, और उसी व्याकरण ने जो है ना धातु पाठ जो था पहले तो ऐसे ही था भू एध पच लभ इस तरह से था, अर्थ का निर्देश नहीं था। वो भीम नाम के आचार्य ने क्या किया, धातु पाठ में अर्थ निर्देश जोड़ दिया, भू सत्तायाम एध वृद्धो बागति गंधन यो, इस तरह से उन्होंने अर्थ को जोड़ दिया, माने ये आधुनिक हो गया, मॉडर्न हो गया, ये परंपरा की चीज नहीं हुई, ये पाणिनि कात्यायन पतंजलि के द्वारा जो है अर्थ का निर्देश अगर किया गया होता तो वह नियामक बन सकता था, वो नियम करता कि हाँ जी इस अर्थ में इसकी धातु संज्ञा हो अन्य में न हो। लेकिन यह जो अर्थ है यह तो आधुनिक अर्थ है, हैं आधुनिक अर्थ निर्देश है, तो यह नियामक नहीं हो सकता, यह प्रामाणिक नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो मुनित्रय ही प्रमाण है, दूसरे प्रमाण नहीं है। तो भाष्य में अर्थानादेशनात् ऐसा प्रयोग हुआ है, माने अर्थ अनादेशनात् माने धातु के अर्थ का जो है आदेश पाणिनि ने नहीं किया है, ये मतलब है अर्थस्य अनादेशनात्, धातु अर्थस्य माने धातु अर्थस्य, धातु के अर्थ का आदेशन पाणिनि ने नहीं किया है, विधान आदेशन माने विधान, विधान नहीं किया है। इति भाष्य पर्यालोचनया, ये जो भाष्य है इसकी पर्यालोचना करने से, पर्यालोचना माने इसको मान लेने से, स्वीकार करने से अथवा विचार करने से आधुनिकत्व लाभात, ये जो धातु पाठ में अर्थ निर्देश है उसमें आधुनिकत्व का लाभ होता है, माने ये अर्थ निर्देश आधुनिक है और जो आधुनिक चीजें हैं वह कभी भी प्रमाण नहीं हो सकती। तो इस तरह से यहाँ पर आकर के दसवीं कारिका जो है उसका विवरण संपन्न होता है। अब ग्यारहवीं कारिका की भूमिका जो है यहाँ पर बताई जा रही है कि ननु अस्तु क्रियावाचकत्वे सति गण पठतत्वम धातुत्वम। अब मीमांसक ये बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है ये धातु का जो आपने लक्षण बताया क्रियावाचकत्वे सति गण पठतत्वम धातुत्वम, चलिए मैं इस बात को मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है ना थेथरे कर रहे हैं मीमांस, कहते हैं कि ये तो धातु का लक्षण सही है लेकिन क्रियाच धात्वर्थ एव, ये क्रिया जो है यहाँ पर क्रियावाचकत्व सती में जो क्रिया है ना उस क्रिया का अर्थ व्यापार नहीं मान करके, उस क्रिया का अर्थ जो है वह क्रिया का अर्थ किसका मानना चाहिए, तो हाँ क्रियावाचकत्व सती में जो है ना क्रिया शब्द जो है उसका अर्थ फल करना चाहिए, तो क्या होगा क्रियावाचकत्व सती मतलब हो जाएगा फलवाचकत्व सती, माने जो फल का वाचक हो और जिसका गण में पाठ हो उसकी धातु संज्ञा होगी, ऐसा अर्थ इससे निकलेगा। जो आपने लक्षण किया वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन लक्षण की व्याख्या मेरी अपनी होगी, अपनी होगी माने क्रियावाचकत्व सती का मतलब हो जाएगा कि फलवाचकत्व सती, इसी बात को कहा कि क्रियाच धात्वर्थ एव न व्यापारः, यहाँ क्रिया जो है वो धातु का अर्थ है माने फल रूप क्रिया है, वह व्यापार रूप क्रिया नहीं है। इति आशंकाम, इस तरह की जो आशंका जाहिर की मीमांसकों ने तत्समाधत्ते, उसका समाधान जो है ग्यारहवीं कारिका में भूषण ये भट्टोज दीक्षित इसका समाधान कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने, तो 11वीं कारिका में कहते हैं कि धातु अर्थत्वम क्रियात्वं चेत धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्य संश्रय स्पष्ट तस्मात अस्तु तथा करम। ताकि अगर आप ऐसा करेंगे कि क्रिया का अर्थ जो है फल मान लेंगे और उस फल को जो है ना धातु का अर्थ आप मानते हैं, तो क्या होगा, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। ऐसा है कि जैसे अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष होता है, और उसी तरह से ये अन्योन्याश्रय दोष भी होता है। और इन दोषों में से एक भी दोष अगर लक्षण में रहेगा ना, तो वह लक्षण प्रामाणिक नहीं माना जाता है। तो यहाँ अगर इस तरह का आप करेंगे व्याख्या क्रियावाचकत्व सती घन पठितत्व धातुत्व में कि फलवाचकत्व सती घन पठितत्व धातुत्व, तो क्या हो जाएगा, अन्योन्याश्रय दोष होगा। कैसे अन्योन्याश्रय दोष होगा, तो वही कारिका में बताया गया कि धात्वर्थत्व क्रियात्व अधातुत्व क्रियार्थता, माने धात्वर्थत्व के लिए क्रियात्व का और धातुत्व के लिए क्रियार्थत्व का जो है ज्ञान अपेक्षित होगा। फिर अन्योन्य संश्रय, संश्रय माने आश्रय, अन्योन्य आश्रय को ही अन्योन्य संश्रय कहते हैं। तो इस तरह से धात्वर्थत्व के ज्ञान के लिए क्रियात्व का ज्ञान चाहिए, धातुत्व के ज्ञान के लिए क्रियार्थत्व का ज्ञान चाहिए, और इस तरह से अन्योन्य संश्रय होगा माने अन्योन्य आश्रय दोष हो जाएगा। और स्पष्ट या स्पष्ट है यह दोष, तस्मात अस्तु तथा करम, इसीलिए जैसे आकर ग्रंथ में बताया गया, महाभाष में बताया गया धातु का लक्षण, वैसा ही लक्षण स्वीकार करना चाहिए, अपनी ओर से उसमें संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर अभी बताई गई है, इसका विस्तृत विवेचन जो है हम अगले पाठ में करेंगे।